जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन,
यशोदा नंदन व्रज जन रंजन,
यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि वो हस्तिनापुर चले जाएं और जांच करें पांडवों के हालचाल के बारे में। उन्होंने सुना था कि धृतराष्ट्र पक्षपात कर रहे हैं, अपने पुत्र कौरवों के प्रति अधिक स्नेह होने के कारण वो लापरवाही कर रहे हैं और बल्कि अन्याय कर रहे हैं पांडवों के प्रति। पांडव श्री कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण भक्त वत्सल हैं, तो वो चाहते थे कि ऐसा अन्याय न हो, परंतु वो प्रामाणिक समाचार चाहते थे, अपने अधिकृत कोई प्रतिनिधि के द्वारा, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को वहां भेजा एक संदेश लेकर। और ये संदेश देने का उद्देश्य था कि कहीं धृतराष्ट्र यदि गलती से ऐसे कर बैठे हों और उनको पछतावा हो रहा हो, तब इस संदेश के द्वारा वो सही रास्ते पे चले आएं और पांडवों को जो अपना अधिकार है वो प्राप्त करा दें। तो अक्रूर जी निकल पड़े और वहाँ पर पहुँचे हस्तिनापुर में। वहाँ पे सारे उनके रिश्तेदार थे, मित्र आदि थे, उनसे मिले, सबका हालचाल पूछा। और सुखदेव जी कहते हैं उवास कतचिन मासान, कई महीनों तक वहाँ पर रहे और अपनी आँखों से देखना चाहते थे, अपने कानों से सुनना चाहते थे कि वास्तव में परिस्थिति क्या है। और फिर आगे कुंती महारानी और विदुर जी अक्रूर जी के पास आते हैं और बहुत विस्तार में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से पांडवों के प्रति अन्याय हो रहा है और कैसे धृतराष्ट्र पक्षपात कर रहे हैं। दुर्योधन आदि बहुत ईर्ष्या करते थे पांडवों के प्रति, क्योंकि हर दृष्टि से पांडव श्रेष्ठ थे, सद्गुणों से संपन्न थे पांडव और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, और ये कौरवों के लिए असहनीय हो गया था। और आगे फिर कुंती महारानी अपने जन्म स्थान का स्मरण करते हुए अक्रूर जी से बात करती हैं। उनकी आंखें पानी से या आंसू से भर जाती हैं और अब वो श्री कृष्ण के प्रति प्रार्थना करने वाली हैं। यद्यपि अब बात कर रही हैं अक्रूर जी से, परंतु मन ही मन उनको कृष्ण की याद आ रही है। और इन तीन और आगे वाले इन श्लोकों में वो कह रही हैं कि क्या वहाँ पर हमारे जो माता आती हैं वो सब हमें याद कर रहे हैं। तो वो कहती हैं आठवें श्लोक में अक्रूर जी से, अपि स्मरन्ति नः सौम्य, हे सौम्य अक्रूर, हमें क्या स्मरण कर रहे हैं। अपि स्मरन्ति नः, कौन हमारा स्मरण कर रहे हैं या नहीं, पितरौ उनके जो माता पिता, भ्रातरः उनके भाई, भगिन्यौ उनकी बहनें, भ्रातृपुत्राः उनके भाइयों के पुत्र, तो क्या। और फिर जामयः सख्य एवच, जो सारे कुल की महिलाएं हैं और उनकी स्वयं कुंती महारानी की जो सहेलियां हैं, ये सारे के सारे क्या हम सबका स्मरण कर रहे हैं या वो हमें भूल गए हैं। क्योंकि जब कोई महिला विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है तो अपने माता पिता या अपने मायके की याद भी बीच बीच में आती है, कई बार बहुत ज़्यादा आ जाती है, और फिर वो सोचती हैं कि क्या हमारा स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, कि हमें भूल गए। फिर आगे कहते हैं भ्रात्रेयो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सल पैत्री स्वश्रेयान स्मरति रामश्च अम्भुरेक्षण। अब विशेष करके वो कृष्ण और बलराम के बारे में पूछ रहे हैं। भ्रात्रेय अर्थात अब मेरे भाई के पुत्र, कौन है उनके भाई के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, भगवान, उनका नाम क्या है, कृष्ण है, और उनके गुण क्या हैं, शरण्य है, वो शरण प्रदान करते हैं, क्यों, भक्तवत्सल, क्योंकि अपने भक्तों से वो बहुत प्रेम करते हैं तो उनको शरण ग्रहण देते हैं। तो ऐसे मेरे जो भाई के पुत्र हैं, जो भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, क्या वो हमारा स्मरण कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, क्या क्या पैतृ स्वश्रेयान स्मरति, मतलब उनके पिता के बहन को, बहनों को क्या, और उनके बच्चों को, पुत्रों को क्या वो स्मरण कर रहे हैं? स्वश्रेयान, उनके पिता के बहन के बच्चों को क्या वो याद कर रहे हैं? पैतृ स्वश्रेयान स्मरति। साथ साथ रामश्च, राम जो बलराम है और जो क्या है, अम्बुरुह ईक्षण, जिनकी आंखें कमल की तरह हैं। अम्बुरुह, अम्बुरुह अर्थात, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, पिछले श्लोकों में भी अम्बुरुह शब्द आया था, तो अम्बु या जल से उठने वाला, अर्थात जिसका जन्म जल में होता है, तो कमल पुष्प को अम्बुरुह कहते हैं। तो अम्बुरुह ईक्षण, जो कमल नयन बलराम भी क्या हम सबका स्मरण कर रहे हैं? फिर आगे कुंती महारानी कहती हैं, सपत्न मध्ये शोचंतीम, सपत्न अर्थात शत्रु, मध्ये मैं अभी मेरे शत्रुओं के बीच में हूं और इसलिए मैं शोक कर रही हूं। तो ऐसे शोक करने वाली शोचंतीम, उनके बारे में क्या कृष्ण सोच रहे हैं? पित्र हीनांश्च बालकान, जो और साथ साथ में मेरे जो पुत्र हैं जिनके पास अभी पिता नहीं है, पित्र हीनांश, पितृहीन मेरे जो बालक हैं, पित्र हीनांश्च बालकान, तो मैं जो यहां शत्रुओं के बीच में शोक कर रही हूं और मेरे जो पुत्र हैं जो कि पिताहीन हैं, क्या उनको सांत्वयिष्यति माम वाक्यैः ही, सांत्वना के वाक्य कह रहे हैं? क्या वो यहां आके सांत्वना के शब्द कहेंगे मुझसे? और मेरी दशा क्या है? मैं शत्रुओं के बीच में इस प्रकार से हूं जैसे वृकानाम हरिणीम इव, जैसे भेड़ियों के बीच में कोई हरिण है। तो सोचिए कितनी खतरनाक अवस्था होगी किसी हरिण की, जबकि वो हरिण जो है भेड़ियों के बीच में होगी। तो ठीक उसी प्रकार से, हे अक्रूर, मैं अब इन शत्रुओं के बीच में हूं, ये सब मेरे हितैषी नहीं हैं, और साथ साथ मेरे मासूम बच्चे भी हैं, तो क्या कृष्ण आएंगे यहाँ हमें सांत्वना देने के लिए? और अब सीधे श्री कृष्ण का संबोधन करती हैं कुंती महारानी तीन श्लोकों में, और इन तीन श्लोकों से हमें स्मरण होता है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में, जो कुंती स्तुति के नाम से विख्यात हैं भक्त समाज में। वो जो 8वें अध्याय, पहले स्कंध के 8वें अध्याय की कुंती स्तुति है, वो श्री कृष्ण के लीलाओं के काल क्रम में बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि याद रखिए इस समय श्री कृष्ण अभी भी मथुरा में है, द्वारका नहीं गए थे वो अभी तक। फिर द्वारका में कई वर्ष रहने के बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने हो रहा होगा, फिर उसके बाद फिर कुंती स्तुति होती है, तो बहुत सालों के बाद कुंती महारानी वो प्रसिद्ध स्तुति कहती हैं। परंतु यहाँ पर कुंती महारानी अपनी भक्ति का ये उन स्तुतियों की झलक देने जा रही हैं। एक संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए कुंती स्तुति यहाँ पर है आने वाले तीन श्लोकों में, और इससे हम जान सकते हैं कि कुंती महारानी कोई साधारण महिला नहीं थी, केवल श्री कृष्ण के पिता की बहन नहीं थी, वो एक महान भक्त थी। और इतना ही नहीं, जब हम इन तीन श्लोकों को पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हमें ज्ञात होगा कि कुंती महारानी को भली भांति पता था कि श्री कृष्ण भगवान हैं। यद्यपि वो वात्सल्य भाव में थीं, फिर भी उनको पता था कि श्री कृष्ण तात्विक रूप से हैं कौन। वो तो हमारे बीच में ऐसे आके निवास कर रहे हैं, मेरे भाई के पिता के रूप में प्रकट हुए हैं ये कृष्ण, परंतु वास्तव में ये तो भगवान ही हैं। तो आइए इन तीन सुंदर श्लोकों का पठन हम करें। तो आप सब भी पीछे पीछे बोलिएगा अपने अपने कमरों में, जहां भी आप बैठे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन,
कृष्ण कृष्ण महायोगिन,
विश्वात्मन विश्वभावना,
विश्वात्मन विश्वभावना,
प्रपन्नाम पाहि गोविंद,
प्रपन्नाम पाहि गोविंद,
शिशुभिश्चावसीदतीम,
शिशुभिश्चावसीदतीम,
कृष्ण कृष्ण महायोगिन,
कृष्ण कृष्ण महायोगिन,
विश्वात्मन विश्वभावना,
विश्वात्मन विश्वभावना,
प्रपन्नाम पाहि गोविंद,
प्रपन्नाम पाहि गोविंद,
शिशुभिश्चावसीदतीम,
शिशुभिश्चावसीदतीम।
कृष्ण कृष्ण, अब सीधे कृष्ण का संबोधन करते हुए, यद्यपि श्री कृष्ण दूर मथुरा में हैं और कुंती महारानी हस्तिनापुर में हैं, परंतु भक्त के लिए कृष्ण सदैव निकट रहते हैं, क्योंकि कृष्ण की निकटता या दूरी ये कोई भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, ये हमारी चेतना की अवस्था पर निर्भर है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो ऐसे भक्त के लिए श्री कृष्ण सदैव साथ में हैं, निकट ही हैं। तो अब कुंती महारानी कह रही हैं कृष्ण कृष्ण कि हे कृष्ण, महायोगिन कि हे महायोगी, विश्वात्मन आप तो संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं, विश्व भावना आप संपूर्ण विश्व के रक्षक हैं, प्रपन्नाम पाहि गोविंद कि आपके जो शरण में आए हुए भक्त हैं आप उन्हें प्रार्थना कीजिए, मैं जो आपके शरण में आई हूं मेरी रक्षा कीजिए, परंतु अकेले नहीं मेरे पुत्रों के साथ, शिशु भी। और हमारी दशा क्या है? अवसीदतीम, हम लोग दुख के सागर में डूब रहे हैं, इसलिए मुझे और मेरे पुत्रों की रक्षा, मेरे पुत्रों को बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम आपके शरणागत भक्त हैं। तो कुंती महारानी की भावना ये है, जो संपूर्ण विश्व के रक्षक हैं निश्चित ही वो मेरे परिवार का रक्षण भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो रक्षा के लिए, रक्षा की याचना कर रही हैं भगवान कृष्ण से। और अवसीद तीम का तात्पर्य है कि कुंती महारानी के जीवन में इतने सारे कष्ट थे कि इनका वर्णन करना मुश्किल है, वो अब थक गई थीं इन कष्टों को झेलकर, एक के बाद एक ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां आए दिन उनके जीवन में आती थीं, और उनकी सहन शक्ति की बहुत कड़ी परीक्षा हो रही थी, उनकी श्रद्धा की परीक्षा थी। वास्तव में हम सबके जीवन में ऐसे ही होगा, परीक्षाएं प्रतिदिन आएंगी, तरह तरह की परीक्षाएं, विभिन्न दिशाओं से परीक्षाएं आएंगी, विभिन्न लोगों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, तो ये सब हमारे लिए परीक्षाएं हैं, हमारी श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों के बीच में हमें कुंती महारानी का स्मरण करना चाहिए। कुंती महारानी की भावना जो श्री कृष्ण के 13-14 वर्ष के आयु में थी, वही इनकी भावना थी जब श्री कृष्ण की आयु 85 के लगभग थी। 70 साल बाद में भी वही भावना थी उनकी, जबकि उन्होंने कुंती स्तुति प्रार्थना की। और सदैव भक्त की भावना ऐसे होती है। उस समय भी कुंती महारानी की जो अवस्था है वो कम नहीं थी। कुछ जो उनकी समस्याएं कितनी थी, उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी देखिए क्या 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 नहीं हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो गई, सारे कुरु वंश प्राय नष्ट हो गया। तो इतना सब होने के बाद भी कुंती महारानी की श्रद्धा में, उनके कृष्ण प्रेम में तनिक भी कोई घटन नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बात है। कुंती महारानी हमारे लिए एक आदर्श भक्त हैं। तो चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के भक्ति के रास्ते में हर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, परंतु भक्ति को योग्य होना चाहिए। और योग्यता का मापदंड क्या है? हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारी निष्ठा, हमारी दृढ़ता भक्ति में, कि कभी भी चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय कभी न छोड़ें। छोड़ने के लिए तथा कथित कारण अनेक आएंगे हमारे जीवन में, परंतु क्या हमारी बुद्धि आध्यात्मिक है? इन विकट परिस्थितियों को हम सही दृष्टि से देख सकते हैं कि ये सारे भी भगवान की कृपा है? इसलिए श्रवण करना, पठन करना, कीर्तन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि ये जो एक दिव्य बुद्धि है वो सदैव हमारे साथ में रहे, ये हमारा साथ कभी छोड़े नहीं। विकट परिस्थितियों में ऐसे दिव्य बुद्धि कभी कभी हमारा साथ छोड़ देती है। जब वो बुद्धि इतने दृढ़ या इतने विकसित नहीं होती है तब, परंतु बार बार श्रवण करने से बुद्धि को प्रबल किया जा सकता है, दिव्य बुद्धि को, दिव्य विवेक को। और ऐसे दिव्य प्रबल बुद्धि से दृढ़ता बढ़ती है, श्रद्धा निष्ठा बढ़ती है, और फिर हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो कुंती महारानी ऐसी थक गई थीं, निस्सहाय अवस्था में थीं, और निस्सहाय अवस्था वास्तव में सबसे श्रेष्ठ अवस्था है भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए। कुंती महारानी तो ऐसे ही प्रार्थना करती हैं। जब अनेक वर्षों बाद वो प्रार्थना करेंगी श्री कृष्ण से, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, तो कुंती महारानी कहती हैं, विपदः सन्तु तः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। कि हे कृष्ण, हे जगत गुरु, विपदः सन्तु तः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद्। हाँ, देखिए ये सुंदर श्लोक यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं। विपद अर्थात कठिन परिस्थिति, संतु मतलब होने दीजिए, आने दीजिए। विपद संतु ताह उनको आने दीजिए, शश्वत ताह शश्वत बार बार आने रहे, आने दीजिए, एक के बाद एक आने दीजिए। और वैसे भी यदि हम कहेंगे कि आने से रोक लीजिए, वैसे नहीं होगा, आएंगे। हमारे न चाहने से भी कष्ट रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं, आने दीजिए कष्टों को। विपदः संतु ताः शश्वत तत्र तत्र जगतगुरु को, कि जैसे जैसे है जगतगुरु ये कष्ट आते हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये कष्ट आते हैं हे जगतगुरु, भवतः दर्शनम यत् स्यात्, आपका दर्शन होता है, अर्थात इन कष्टों में मैं आपको देखती हूँ। तो कष्ट क्या है? ये कष्ट भगवान का रूप है, भगवान की कृपा है। तो कुंती महारानी जैसे जो उन्नत भक्त हैं, वो भगवान को इस तरह से देखते हैं। भगवान निश्चित ही अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने खड़े हुए हैं, परंतु क्या हम कष्टों को भी भगवान का रूप मान सकते हैं? कुंती महारानी कहती हैं कि जैसे जैसे कष्ट एक के बाद एक हमारे जीवन में आते हैं, तो हम आपका दर्शन करते हैं। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे ही कष्ट आते हैं तो हम आपका तीव्र स्मरण करते हैं। तो जो सुख के समय भी भगवान का स्मरण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, तो दुख के समय भी आनंद ही होगा। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। तो ये समस्या होती है। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि जब ये कष्ट आते हैं तो मैं आपका तीव्रता से स्मरण करती हूँ, और स्मरण करना आपका आपके दर्शन करने के बराबर है। तो चाहे हम भगवान का नामोच्चारण करें अपने जीभ से, चाहे हम अपने मन ही मन भगवान का स्मरण करें, चाहे हमारे आँखों से हम भगवान का सुंदर रूप देखें, चाहे हमारे कानों से भगवान की कथाएं सुने, हमारे नसिकाओं से उनको अर्पित किए हुए फूलों को या अगरबत्ती को सूंघ लें, ये सब भगवान ही हैं। परम सत्य होने के कारण भगवान अपने आप को विविध रूपों में प्रकट कर सकते हैं। इसलिए भगवान का तीव्रता से स्मरण करना भगवान का दर्शन करने के बराबर ही है। और जब आपका दर्शन होता है, भवतो दर्शनम यत् स्याद, तो फिर क्या होता है? अपुनर्भव दर्शनम, फिर हम कभी ये पुनर्भव को नहीं देखते हैं, अपुनर्भव को देखते हैं। पुनर्भव, भव मतलब होना, तो इस भौतिक जगत को भी भव कहा जाता है। क्या होना? बीमार होना, बूढ़ा होना, मृत होना, फिर से जन्म ले लेना, तो ये है भवसागर, भवसिंधु, भवाम्बुधिम। तो जब हम बार बार जन्म लेते हैं तो इसे भव कहते हैं, और इसको पुनर्भव, पुनर्भव। तो कुंती महारानी कहती हैं, आप जब कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, तीव्रता से मैं आपका स्मरण करती हूँ, तो आपका दर्शन होता है, और ऐसे दर्शन से मुझे पुनर्भव का दर्शन नहीं करना पड़ता। कितनी सुंदर बात कह रही हैं कुंती महारानी। तो खैर, इस प्रकार से कुंती महारानी हम सबको सिखला रही हैं कि हमें कैसे दुखों का सामना करना चाहिए और हमारी भावना कृष्ण के प्रति कैसे होनी चाहिए। तो अगले श्लोक में श्री कुंती महारानी क्या कहती हैं श्री कृष्ण से, प्रत्यक्ष संबोधन कर रही हैं श्री कृष्ण का। नान्यत् तव पदाम्भोजात्,
नान्यत् तव पदाम्भोजात्,
Pashyami Sharanam Rinam
Pashyami Sharanam Rinam
Bibhyatam Mrityu Sansarad
Bibhyatam Mrityu Sansarad
Ishvarasya Pavargikat
Ishvarasya Pavargikat
Bibhyatam Kshama kiji Nanyat Tav padam bhojat
Nanyat tav padam bhojat
Pashyami sharanam nrinam
Pashyami sharanam nrinam
Bibhyatam mrityu samsarad
Bibhyatam mrityu samsarad
Ishvarasya pavargikat
Ishvarasya pavargikat
Na anyat tav padam bhojat Pashyami sharanam drinam To Kunti Maharani kehti hai Na anyat Aur koi nahi और कोई दूसरा उपाय नहीं तव पदाम भोजात पश्याम न अन्यत पश्यामि मैं कोई अन्य रास्ता नहीं देखती हूँ सिवाय शरणाम तव शरणम मतलब आपके शरणागति के सिवाय मैं और कोई उपाय नहीं देखती हूँ क्या उपाय है ये पदाम भोजात शरणम आपके चरण कमलों के आश्रय के सिवाय मैं और कोई उपाय नहीं देखती हूँ किन के लिए नृणाम उन मनुष्यों के लिए जो कि बिभ्यताम जो कि बहुत भयभीत हो चुके हैं किससे भयभीत हो चुके हैं मृत्यु संसारात मृत्यु संसार से भयभीत हो चुके हैं जो लोग उनके लिए आपके चरण कमलों के शरण के सिवाय और कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप ईश्वरस्य आप वर्गिकात क्योंकि आपके चरण कमल ही हैं आप ही हैं जो कि वास्तव में व्यक्ति को इस भयंकर मृत्यु संसार से मुक्त करा सकते हैं तो कुंती महारानी अपवर्गिकात शब्द का प्रयोग करती हैं अपवर्ग शब्द अवश्य आपने पहले भी सुना होगा पवर्ग अपवर्ग इत्यादि आप जानते हैं ना देवनागरी लिपि में कैसे क ख ग घ ङ ये सब होता है ना इनको सब वर्ग कहते हैं क वर्ग च छ ज छ न ये च वर्ग हो गया ट ठ ड ढ न ये ट वर्ग हो गया उसी प्रकार से प वर्ग प फ ब भ म तो ये प वर्ग तो ये प वर्ग क्या है ये भौतिक जगत का वर्णन है प मतलब परिश्रम फ मतलब परिश्रम कर कर के मुख से फेन आने लगते हैं फिर उसके कारण ब बंधन हम इतने सारे बुरे कर्म करते हैं कभी अच्छे कर्म भी करते हैं परंतु कर्म बंधन में फंस जाते हैं प फ ब और भ और इसके कारण हम भयभीत रहते हैं हर अवस्था में कि हमारे जीवन में अगले कदम में क्या होगा हमें पता नहीं विपदः संतु है ना वो विपदः तरह तरह के पदम पदम यद विपदाम न तेषाम हर पद पे यहाँ विपद है इसलिए भयभीत हम रहते हैं सदैव और फिर म मृति या मृत्यु तो ये है भवसागर ये भौतिक जगत की पहचान इसलिए इस भवसागर को पवर्ग कहा गया है और पवर्ग से मुक्ति की अवस्था को अपवर्ग कहा गया है तो ईश्वरस्य आपवर्गिकात का मतलब है कि ईश्वर श्री कृष्ण ही ऐसी मुक्ति दिला सकते हैं तो मुकुंद शब्द का अर्थ है जो मुक्ति दिलाते हैं मुक्ति प्रदाता मुकुंद इसलिए कृष्ण का नाम मुकुंद है क्योंकि वही एकमात्र हैं जो कि मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी यहां पर कह रही हैं कि यहां तो सभी लोग भयभीत है ना, कौन ऐसे व्यक्ति है जो निर्भय है। तो और विशेष रूप से इस मृत्यु संसार के सागर से सब लोग डरे हुए हैं, इसलिए सबके लिए एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करना। और ये किसकी राय है? कुंती महारानी जो वास्तव में महान भक्त हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ी आदर्श हैं। तो पदाम भोजात, तो हम अलग अलग शब्द सुन चुके हैं कमल कमल के लिए। तो यहाँ पे पद अम्भोजात, अम्भोज का अर्थ भी है कमल। इसे अम्बुरुह हम सुन चुके थे, तो अम्भस मतलब जल। तो अम्भस या जल में जो जन्म लेता है, अम्भस और ज से अम्भोज, और उसमें पाद जोड़ दिया, पद जोड़ दिया, तो पद अम्भोजात। इसलिए यहां पर कुंती महारानी कहती हैं नान्यत्तव पदाम भोजात पश्यामि शरणम ऋणाम। तो खैर ये परिस्थिति है भौतिक जगत की, इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे लिए एकमात्र उपाय। परंतु श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? कुंती महारानी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में उनकी स्तुति के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। 36वां श्लोक है 8वें अध्याय का पहले स्कंद में, तो इसका पाठ भी हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कुंती महारानी ने कही है। क्या कहती हैं श्लोक के लिए मैं राह देख रहा हूं। हाँ देखिए, आप सब परिचित होंगे इस श्लोक से, तो आइए हम गाते हैं इस श्लोक को। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन् गृणन्त्यभीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम्, भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो कुंती महारानी कहती हैं कि शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति जो गाते हैं, गृणन्ति जो स्वीकार करते हैं, अभीक्ष्णशः अर्थात निरंतर बार बार, स्मरन्ति जो स्मरण करते हैं, नन्दन्ति जो आनंद लेते हैं, तव इहितम जनाः, तो जो लोग इन चीजों को करते हैं ते जनाः, तो त एव ऐसे लोगों के लिए निश्चित ही पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, वो शीघ्र ही अचिरेण, चिरेण मतलब बहुत लंबे समय से के बाद, और अचिरेण मतलब लंबे समय के बाद नहीं अर्थात शीघ्र ही। तो ऐसे लोग जो आपके बारे में सुनते हैं, गाते हैं, स्वीकार करते हैं, आपको आपका स्मरण करते हैं, आपकी कथा आदि में रमण करते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्दी ही शीघ्र ही आपका दर्शन होता है। पश्यन्ति वो आपको देख सकते हैं। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, वो आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। पश्यन्ति पदाम्बुजम् तावकम्, वो आपके चरण कमलों का दर्शन शीघ्र ही कर लेते हैं। और ऐसे दर्शन से क्या लाभ होता है? भव प्रवाह उपरमम्, जो भव प्रवाह है, ये संसार के सागर या नदी का जो प्रवाह है, जो बहुत ही तीव्र है और जो अनादि काल से कोटि कोटि जन्मों से हमको बहा के ले जा रहा है, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे से तीसरे, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक लोक से दूसरे लोक में, अनादि काल से ये भव का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कैसे? केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने मात्र से। और आपके चरण कमलों का दर्शन कैसे होगा, किनको होगा? वो लोग जो आपके बारे में निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, आपकी सेवा में आनंद लेते हैं। इस प्रकार से कुंती महारानी हम सबको इन स्तुतियों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दे रही हैं। और तीसरा श्लोक कुंती महारानी के प्रार्थनाओं में इस 49वें अध्याय में दशम स्कंद के, अक्रूर जी से जब कुंती महारानी बात कर रही हैं तो ये श्लोक इस प्रकार से कहती हैं। फिर से बहुत सुंदर श्लोक है। नमः कृष्णाय शुद्धाय,
नमः कृष्णाय शुद्धाय,
ब्रह्मणे परमात्मने,
ब्रह्मणे परमात्मने,
योगेश्वराय योगाय,
योगेश्वराय योगाय,
त्वामहं शरणं गता, नमः कृष्णाय शुद्धाय,
कृष्णाय शुद्धाय,
ब्रह्मणे परमात्मने,
ब्रह्मणे परमात्मने,
योगेश्वराय योगाय,
योगेश्वराय योगाय,
त्वामहं शरणं गता, अब कुंती महारानी प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं कृष्ण को। क्या कहती हैं? नमः कृष्णाय, आपके प्रति नमन, मेरा नमस्कार है आपको। तो जब हम संबोधन करते हैं कहते हैं कि आपको, तो इसलिए कृष्णाय कहते हैं। कृष्ण को हम कुछ अर्पण कर रहे हैं कृष्ण के प्रति। तो शुद्धाय, क्योंकि कृष्ण का और एक नाम है शुद्ध, क्योंकि वो पवित्र हैं पूरी तरह से। कृष्णाय शुद्धाय, नमः शुद्धाय। फिर नमः ब्रह्मणे, तो भगवान कृष्ण परब्रह्म है वास्तव में, परम सत्य है वो, इसलिए नमः ब्रह्मणे। नमः परमात्मने, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। नमः योगेश्वराय, समस्त योगों के वो ईश्वर हैं, जैसे कि भगवद गीता के अंतिम श्लोक में हम पढ़ते हैं ना, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः, तो कृष्ण योगेश्वर हैं। नमः योगाय, यहाँ श्रीधर स्वामी तात्पर्य में बतलाते हैं कि यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है कि जो ज्ञान के, समस्त ज्ञान के जो स्रोत हैं, उद्गम हैं, जो कि वो प्रेम के द्वारा प्रकट करवाते हैं उनके भक्तों में। तो भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा भक्त भगवान को जान लेता है। और उपनिषदों में कहा गया है कि जब हम भगवान को जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम् इदं विज्ञातं भवति, जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। दूसरे शब्दों में उसे और कोई जानने लायक चीज नहीं रहती है। तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि कुंती महारानी भली भांति इस समय भी, जबकि उन्होंने श्री कृष्ण को अभी तक देखा नहीं है प्रकट लीला में, वो जानती हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, परम सत्य हैं। तो इन तीनों श्लोकों से कुंती महारानी के दिव्य ज्ञान और उनके भक्ति का प्रकाशन हो रहा है। और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं श्लोक को हम देखें। इत्यनुस्मृत्य स्वजनम कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदत दुखिता राजन भवतां प्रपितामही इति अनुस्मृत्या। इति अनुस्मृत्य, इस प्रकार से बार बार स्मरण करने के बाद, अनु मतलब बार बार करना, तो इस तरह कुंती महारानी ने बार बार स्मरण किया। किनका स्मरण किया? स्वजनम, अपने परिवार के सदस्यों का स्मरण किया। कृष्णम च, और कृष्ण का भी स्मरण किया जो कि जगत ईश्वर हैं। कृष्णम च जगदीश्वरम प्रारुदत दुखिता राजन। तो सुखदेव गोस्वामी बात कर रहे हैं ना, तो राजन यहां अर्थात परीक्षित महाराज। तो हे परीक्षित महाराज, ऐसे अपने स्वजनों का और श्री कृष्ण का स्मरण करते करते प्रारुदत दुखिता, कुंती महारानी जो बहुत दुखी थीं, वो जोर से रोने लग गईं। प्रारुदत भवताम प्रपितामही। और कुंती महारानी कौन थीं? अब कुंती महारानी और परीक्षित महाराज के बीच में संबंध क्या था? अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भवताम मतलब आपके, अर्थात परीक्षित महाराज के, कुंती महारानी कौन है? प्रपितामही अर्थात परदादी हैं। परीक्षित महाराज के पिता थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता और परीक्षित महाराज के दादा कौन थे? अर्जुन। और अर्जुन की माँ कौन थी? कुंती। तो इस प्रकार से कुंती महारानी परदादी बन गई परीक्षित महाराज के, या संस्कृत में कहते हैं प्रपितामही। तो जब कुंती देवी इस प्रकार से जोर से रोने लग गई, तो दोनों अक्रूर जी और विदुर जी ने उनको सांत्वना दी। सम दुख सुखो क्रूर, जो अक्रूर जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कुंती महारानी के सुख दुख में उनके साथ में थे, वो भागीदार थे उनके सुख दुख के। जब कुंती महारानी को सुख होता तो अक्रूर को भी होता, कुंती महारानी को दुख होता तो अक्रूर को भी होता। इसलिए सम दुख सुखो क्रूरो अर्थात अक्रूर। और उधर विदुरश्च महायशाः, तो अति प्रसिद्ध विदुर, दोनों ही हितैषी थे कुंती महारानी के। सांतव्याम आसतुः कुंतीम, सांतव्याम असतुः मतलब दोनों ने सांत्वना दी। किनको? कुंती महारानी को। तत्पुत्रोत्पत्ति हेतु भी ही, कैसे सांत्वना दी विदुर जी ने और अक्रूर जी ने कुंती महारानी को? तत्पुत्र उत्पत्ति हेतु भी ही, उनको याद दिलाया, उनको बतलाया कुंती महारानी को कि देखिए आपके पुत्रों का जन्म कैसे हुआ था, पुत्र उत्पत्ति कैसे हुई थी, आपको याद है ना? तो ये बच्चे साधारण नहीं हैं, इसलिए क्योंकि इनका जन्म भी बड़ा असाधारण है, अद्भुत है, और ये बड़े भक्त भी हैं कृष्ण के, इसलिए विजय निश्चित ही उनकी होगी और उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अंश माने जाते हैं, उनके पुत्र माने जाते हैं। भीमसेन वायुदेव के, अर्जुन इंद्रदेव के, और नकुल और सहदेव वो अश्विनी कुमारों के। तो अक्रूर और विदुर ने कुंती महारानी को उनके 5 पुत्रों के अद्भुत और असाधारण जन्म का स्मरण दिलाया, उनको सांत्वना इस प्रकार से दी, साहस दिलवाया कि अभी आप सोचो नहीं कि आपके 5 पुत्र निस्सहाय हैं, बेचारे नहीं, वो बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत ही योग्य हैं वो। और आगे फिर अक्रूर जी अब संदेश देना पसंद करते हैं, मतलब कृष्ण और बलराम ने दिया हुआ संदेश देने के लिए अक्रूर जी धृतराष्ट्र के सामने आते हैं। उस समय राजा धृतराष्ट्र अपने समर्थकों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में बैठे हुए थे राजदरबार में, अपने सिंहासन पर आसीन थे वो। तो उस समय अक्रूर जी उनके सामने गए और अक्रूर जी के बारे में, क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विषमम पुत्र लालसम, पुत्र लालसा, पुत्रों के प्रति अति स्नेह होने के कारण विषमम, वो पक्षपाती बन गए थे, उनका झुकाव उनके पुत्रों की ओर था और ये स्पष्ट था सभी के लिए, सभी को दिखाई पड़ रहा था, ये पक्षपात कोई छुपी हुई बात नहीं थी। तो ये पक्षपात क्यों हो रहा था? पुत्र लालसम, तो इसलिए उन्होंने पांडवों के प्रति जो है बुरा व्यवहार किया, अन्याय किया। तो इसलिए अब अक्रूर जी धृतराष्ट्र के सामने आए, बंधु भी सुहृद उदितम, अक्रूर जी के सुहृद कौन है? कृष्ण बलराम, उनके बंधु। तो बड़े सौहार्द में कृष्ण और बलराम के संदेश को वो देने के लिए धृतराष्ट्र के सामने आए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और अब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम का संदेश देने जा रहे हैं धृतराष्ट्र को, कब? जब प्रस्थान का समय हो गया है, उस समय अंत में आके वो संदेश देते हैं, क्योंकि अक्रूर जी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और फिर जाके वो कृष्ण को आंखों देखा हाल बताना चाहते थे। तो फिर अक्रूर उवाच, 17वां श्लोक, अक्रूर जी कहते हैं, भो भो वैचित्र वीर्यत्वम, भो भो मतलब हे मेरे प्रिय वैचित्र वीर्य, विचित्र वीर के पुत्र है वैचित्र वीर्य, जैसे कुंती के पुत्र है कौंतेय, तो विचित्र वीर्य के पुत्र है वैचित्र वीर्य, त्वम कुरुणाम कीर्तिवर्धन, आप कुरु वंशियों के कीर्ति के वर्धन करने वाले हैं। प्रशंसा कर रहे हैं अक्रूर जी को, धृतराष्ट्र को थोड़ा नरम बना रहे हैं, क्योंकि अभी आगे चल के थोड़े कटु वचन बोलने हैं अक्रूर जी को, इसलिए उसके पहले थोड़े कुछ नरम कराने के लिए उनको, उनकी प्रशंसा करते हैं। भ्रातरी उपरते पांडाव, आपके भाई भ्रातरी उपरते, उनके निधन के बाद, जिनका नाम है पांडु, तो आपके भाई पांडु के निधन के बाद, अधुना अब आसनम आस्थितः, आप अभी आसन पे, सिंहासन पर बैठे हो। वास्तव में अक्रूर जी क्या कहना चाह रहे थे धृतराष्ट्र को, कि ये जो सिंहासन है इसके लिए अधिकारी व्यक्ति पांडु थे, परंतु पांडु के बाद यहां अधिकार किसका है सिंहासन पर बैठने के लिए? उनके पुत्रों का, विशेष करके उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर महाराज का अधिकार है इस राज सिंहासन पर जिसके ऊपर आप अभी बैठे हुए हैं। वैसे आपको बैठना नहीं चाहिए था, वैसे धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, परंतु क्योंकि वो अंधे थे इसलिए अयोग्य बन गए राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो उनके छोटे भाई पांडु बन गए राजा, और वैदिक नियमों के अनुसार पांडु के पुत्रों को या सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र को राजा पांडु के बाद बनना चाहिए था, परंतु क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे थे तो एक पालक के रूप में धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठ गए। तो उनका व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए था कि वो वास्तव में राज सिंहासन का केवल देखभाल कर रहे हैं इस समय तक कि युधिष्ठिर थोड़े बड़े हो जाएं और फिर उनको बिठा दे वहां पर। और वैसे उन्होंने युवराज कह के घोषित तो कर ही दिया युधिष्ठिर महाराज को जब बच्चे लौट के आए थे जंगल से हस्तिनापुर। तो अक्रूर जी कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में धृतराष्ट्र, आपने इस राज सिंहासन पर बैठकर इस आसन की रक्षा की, किन के लिए? युधिष्ठिर महाराज के लिए। परंतु अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए अब युधिष्ठिर महाराज को अब उनका अधिकार प्रदान कर दो। सीधे शब्दों में अब अक्रूर जी ने इस बात को नहीं कहा, प्रशंसा के रूप में कहा और वस्तु स्थिति जो थी उसके बारे में कहा कि आप बैठे हो इस आसन पे। फिर अगले श्लोक में, 18वें श्लोक में अक्रूर जी कहते हैं, अब उपदेश दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जिसके द्वारा उन्हें निश्चित ही कीर्ति की परिपूर्णता प्राप्त होगी। श्रेयः कीर्तिम अवाप्स्यसि। तो यदि आपको कीर्ति की परिपूर्णता, श्रेयः चाहिए, अवाप्स्यसि आपको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा आपको? आपको तीन चीजें करनी होंगी। तो पहली बात जो आपको करनी होगी वो ये है, धर्मेण पालयन उर्वीम। उर्वीम, उर्वी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी का और एक नाम है उर्वी। वैसे जैसे कमल के, आंखों के, जल के कितने सारे शब्द हैं ना संस्कृत में, वैसे पृथ्वी के लिए भी कई शब्द हैं, मही, उर्वी, धरणी, वसुंधरा, धरा इत्यादि। तो धर्म से, धार्मिक तरह से, रीति से इस पृथ्वी की रक्षा आप करना। धर्मेण पालयन उर्वीम, पहली बात। दूसरी बात, प्रजाः शीलेन रंजयन। अपने शील से, सुशीलता से, अपने अच्छे चरित्र और व्यवहार से प्रजा को आमोद देना। आमोद अर्थात आनंद देना, उनको रंजित करना। दूसरे शब्दों में वो कहना, अक्रूर जी कह रहे हैं कि प्रजा को कैसे आनंद प्रदान कर सकते हो? जब तुम सुशील रहोगे। और तीसरी बात, वर्तमान समह स्वेशु। और वर्तमान का समय का अर्थ ये है कि जो आपके रिश्तेदार हैं स्वेशु, उनके प्रति समभाव रखना। तो अभी संकेत दे रहे हैं अक्रूर जी धृतराष्ट्र को कि पांडु के पुत्रों और आपके पुत्रों में भेद मत कीजिए, समभाव रखिए दोनों में। यदि आप इन तीन चीजें करेंगे, पृथ्वी की रक्षा धार्मिक रीति से करना, अपने चरित्र से प्रजा को संतुष्ट रखना और अपने रिश्तेदारों के प्रति समभाव रखना, ये तीन चीजें यदि आप करोगे तो परम कीर्ति की प्राप्ति होगी आपको। सदुपदेश, ऐसे उपदेश देने वाले हम सबको चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो सद उपदेश दे सकें, परंतु ऐसे व्यक्ति भी सत होने चाहिए जो हमें उपदेश देते हैं। वैसे उपदेश देना तो सभी लोग पसंद करते हैं, परंतु उपदेश देने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है, उपदेश ग्रहण करने के लिए भी आवश्यकता है योग्यता की। अन्यथा अयोग्य व्यक्ति को केवल यदि हम सदुपदेश दें तो जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, वो केवल क्रोधित हो जाता है। जैसे सांप को दूध पिलाने से केवल उसका जहर बढ़ जाता है। तो हमारे इरादे भले अच्छे हों, परंतु अयोग्य व्यक्ति के प्रति जब हम ऐसी अच्छी बातें कहना चाहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो आगे फिर अक्रूर जी कहते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करोगे अन्यथा तो आचरण लोके, तो इस लोक में रहते हुए यदि आपका आचरण ऐसे नहीं होगा, अन्यथा तो आचरण लोके, तो क्या होगा? गर्हितो यास्य से तमः, तो आपकी निंदा होगी। तो तिरस्कार होगा आपका, और अंधकार में आप जाएंगे। तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पांडवेषु आत्मजेषु च। और यदि आप तामसिक या नरक के अंधकार से बचना चाहते हो, और आप यदि इस प्रकार से तिरस्कृत नहीं होना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तस्मात् समत्वे वर्तस्व, आप वर्तस्व अर्थात स्थित रहिए। किसमें स्थित रहिए? समत्वे, समभाव में आप स्थित रहिए। किनके प्रति? पांडवेषु, पांडु के पुत्रों के, और आत्मजेषु, आपके पुत्रों के प्रति। आत्मज अर्थात अपने पुत्र। तो अभी और स्पष्ट बतला रहे हैं, पहले जो थोड़ा बहुत इधर उधर करके अक्रूर जी कह रहे थे, अभी बिंदु पर आ गए। और अक्रूर जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, पांडवों के प्रति और कौरवों के प्रति आपका समभाव होना चाहिए। एक जैसा व्यवहार कीजिए दोनों के साथ में, अन्यथा यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो गर्हितो यास्य से तमः, आपको नरक के अंधकार में प्रविष्ट होना होगा। तो धृतराष्ट्र की समस्या क्या थी? वैसे वो बुरे आदमी नहीं थे, परंतु कमजोर थे। हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता थी उनके अंदर। अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति आसक्त हो गए थे। तो इस प्रकार से दुष्ट लोगों से आसक्ति रखने से हमारी दुर्गति होती है, भले वो व्यक्ति हमारे पुत्र क्यों ना हो, हमारे निकट के कोई मित्र आदि क्यों ना हो। ये सबसे बड़ा दोष था और धृतराष्ट्र के पतन का कारण ये हुआ। अच्छे उपदेश देने वालों की कमी नहीं थी धृतराष्ट्र के दरबार में, यद्यपि दुष्ट लड़के थे उनके, और भी उनके रिश्तेदार थे जैसे शकुनी आदि, परंतु साथ साथ में अच्छे उपदेश देने वाले लोगों की कमी भी नहीं थी। जैसे संजय थे, व्यासदेव थे, और उसी प्रकार से विदुर जी थे, और आज अक्रूर जी भी ऐसे सदुपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। परंतु जैसे आगे चल के धृतराष्ट्र कहने वाले हैं कि, और हर बार वही कहते थे कि आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उपयुक्त है और सही है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे पुत्रों के स्नेह के कारण मैं आपके उपदेशों का पालन नहीं कर पा रहा हूं। और फिर आगे अक्रूर जी कहते हैं कि देखिए, इस संसार में किसी का भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई शाश्वत संबंध नहीं होता है। अरे अन्यों की बात तो दूर रही, अपने शरीर के साथ भी हमारा कोई दीर्घकालीन संबंध नहीं हो सकता है। तो फिर हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे अन्य मित्र आदि है, उनकी बात तो दूर रही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर के साथ भी हमारा नित्य संबंध नहीं है, तो अन्यों के साथ कैसे हमारा नित्य संबंध होगा। परंतु हमारा व्यवहार, हमारी विचारधारा, हमारा रहन सहन इस प्रकार से होता है कि मानो हमारे शरीर के साथ और अन्य हमारे सगे संबंधियों के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। जनस्य मोहो यम अहम ममेति, इससे ये भ्रम और फैल जाता है। और आगे 21वें श्लोक में इसका पठन हम करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण उपदेश ज्ञान का अक्रूर जी देते हैं। एकः प्रसूयते जन्तुः,
एकः प्रसूयते जन्तुः,
एक एव प्रलीयते,
एक एव प्रलीयते,
एकोनुभुङ्क्ते सुकृतम्,
एकोनुभुङ्क्ते सुकृतम्,
एक एव च दुष्कृतम्,
एक एव च दुष्कृतम्।
एकः प्रसूयते जन्तुः, जन्तु अर्थात कोई प्राणी, प्रसूयते अर्थात जन्म लेता है, एकः मतलब अकेला। जब कोई जंतु जन्म लेता है तो अकेले जन्म लेता है। फिर एक एव प्रलीयते, जब मरना होता है तो हर प्राणी अकेले मरता है, साथ में कोई नहीं जाता उसके। फिर एको अनुभुंकते सुकृतम, हमारे सुकृतम, सुकृति जो होते हैं हमारे, जो अच्छे पुण्य कार्य होते हैं, उनको भी हम अकेले ही भोगते हैं। अनुभुंकते का मतलब है हम स्वीकार करते हैं या भोगते हैं। तो हमारे पुण्य कार्यों को भी हम अकेले ही भोगते हैं। एको नुभुंकते सुकृतम, उसी प्रकार से एक एव च दुष्कृतम, तो हमारे दुष्कृति, हमारे जो बुरे कार्य हैं, हमारे जो पाप हैं, उनको भी हम अकेले ही स्वीकार कर लेते हैं, भोग लेते हैं। तो देखिए, हमारे, हम वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में हम केवल अकेले हैं। ये एक भ्रम है कि हमारे साथ में देखो हमारा परिवार है, ये हमारी रक्षा करेगा, हमारे पास हमारा धन है, हमारी रक्षा करेगा धन, हमारे पास पुलिस है, सेना है, बुद्धि है, बल है। नहीं, हम अकेले हैं। हम अकेले आए इस दुनिया में, हम अकेले चले जाएंगे, अच्छे और बुरे कर्मों को अकेले ही हम भोगेंगे। ये बात अक्रूर जी यहाँ पर कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, वैसे कई अजनबी हमारे जीवन में होते हैं, और ये अजनबी किस वेश में आते हैं? हमारे सगे संबंधियों के वेश में आते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के सदस्यों के वेश में आते हैं। और फिर क्या करते हैं वो हमारे बीच में आके? हरंती, हरण कर लेते हैं। किस चीज को हरण कर लेते हैं? वित्तम, हमारे धन को। और ये धन कैसा होता है? अधर्म ओ उपचितम, अधर्म के द्वारा एकत्र किया हुआ, कमाया हुआ जो वित्तम, जो धर्म है, हरन्ति, उसको हर लेते हैं। कौन हर लेते हैं? अन्य लोग हरण कर लेते हैं। किस व्यक्ति का धन? अल्प मेधसः, जिस व्यक्ति की बुद्धि बहुत कम है, जो इस आध्यात्मिक तत्व को नहीं जानता है, उसने जो पाप करके जो धन कमाया हुआ है, अन्य लोग उस धन को हर लेते हैं, छीन लेते हैं। किस प्रकार से छीन लेते हैं? जलानी व जलौकसः, जलानी इव जल ओकसह, जिस प्रकार से एक मछली वो पानी के ऊपर निर्भर रहती है, परंतु मछली के जो बच्चे होते हैं वो भी उसी जल को पीते हैं जिसके ऊपर वो मछली निर्भर है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सगे संबंधी आदि हमारे धन को हर लेते हैं, जो हमारे जीने का आधार है और जिसको हमने पाप करके कमाया हुआ है। तो ऐसे संसार के कड़वे सत्य का वर्णन अक्रूर जी कर रहे हैं। वास्तव में ये जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए ही हम यहाँ पर हैं, फिर भी हम इसको शाश्वत समझकर यहाँ पे रहते हैं कि मानो ये सब ये परिस्थिति चलती रहेगी। तो खैर अक्रूर जी आगे क्या बताते हैं धृतराष्ट्र को, और उनका जब संदेश समाप्त हो जाता है तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं, और उसके बाद फिर अक्रूर जी क्या करते हैं, वो लौट के जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें यदि आपको जाननी हो तो कल शाम को 7 बजे आप अवश्य आइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, यदि किसी के प्रश्न है आज के विषय से संबंधित,
कोई भी भक्त का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से जूम में हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज ऑप्शन को दबा सकते हैं।
ठीक है, तो भजन गाएंगे जय राधा गिरिवर धारी। दीन कृष्ण दास विरचित ये सुंदर भजन है, आइए गाते हैं। जय राधा गिरिवर धारी,
जय राधा गिरिवर धारी,
श्री नंद नंदन वृषभानु दुलारी, श्री नंद नंद वृषभानु दुलारी, राधे वृषभानु दुलारी,
वृषभानु दुलारी, राधे
जय राधा गिरिवर धारी,
जय राधा गिरिवर धारी,
मोर मुकुट मुख मुरली जोड़ी,
मोर मुकुट मुख मुरली जोड़ी,
वेणी विराजे मुखे हासी थोड़ी, जय राधा गिरिवर धारी,
जय राधा गिरिवर धारी,
उनकी सोहे गले
वनमाला इनकी मोतीमाला उजाला जय राधा गिरिवरधारी पीतांबर जग जन मन मोहे
पीतांबर जग जन मन मोहे
नील ओढ़नी बनी उनकी शोहे जय राधा गिरिवरधारी
जय राधा गिरिवरधारी
अरुण चरणे मणि मंजिर बाए श्री कृष्ण दास तही मन भावे जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी
जय राधा गिरिवरधारी
जय राधा गिरिवरधारी। तो राधा रानी और गिरिवरधारी श्री कृष्ण का जय जय हो। श्री नंद नंदन कृष्ण और वार्षभानवी देवी वृषभानु वृषभानु की दुलारी श्रीमती राधा रानी का जय हो। मोर वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी मोर मुकुट। उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है जो कि शिखी पुच्छी से बना हुआ है, जो मोर पंख से बना हुआ है। मुख मुरली जोड़ी, तो उनके मुख पे मुरली चमक रही है। वेणी विराजे, और जहां तक राधा रानी का प्रश्न है, वेणी विराजे मुखे हासी थोड़ी, तो उनकी जो वेणी है वो चमक रही है और मुख में हल्की मुस्कान है श्रीमती राधा रानी की। फिर उनकी शोहे गले वनमाला, तो उनके गले में लटक रही है एक बहुत ही सुंदर वनमाला कृष्ण के। और जहां तक राधा रानी है, तो फिर इनकी मोतीमा माला उजाला, उनके गले में मोतियों की माला है जो चमक रही हैं। फिर पीतांबर जग जन मन मोहे, तो श्री कृष्ण की जो धोती है, जो पीतांबर है, पीले रंग की है, जग जन सारे जग के लोगों के मन को मोहित कर रहा है। तो कृष्ण की पीतांबर, इसीलिए उनको पीतांबर गोपाल कहते हैं। और जहाँ तक श्रीमती राधा रानी का प्रश्न है, नील उड़नी बनी उनकी शोहे, तो नील नीले रंग की जो उनकी ओढ़नी है, जो वस्त्र हैं, वो भी चमक रही हैं। फिर अरुण चरणे मणि मंजर बावे, तो उन दोनों के चरण कमलों में नूपुर हैं, उनके जो अरुण चरण हैं, लालिमा है जिनको चरणों में, और उनमें नूपुर भी हैं जो जिनकी आवाजें आ रही हैं, और इन नूपुरों के आवाज से, और इस प्रकार से कृष्णदास जो हैं, जो इस गीत के रचयिता हैं, वो कहते हैं कि कृष्णदास ताहि मन भावे, उनका मन बिल्कुल भा गया है श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण कमलों के नूपुरों की ध्वनि से। तो ये सुंदर गीत है जय राधा गिरिवरधारी श्रील दुखी कृष्णदास द्वारा विरचित। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।